ਵੇਚ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
रेडियो भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अरविंद भारद्वाज का नमस्कार। रेडियो भारत के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज विक्रमी संवत 2076 के भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, तदनुसार दिन शनिवार 18 अगस्त 2019। आप सभी ने 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व दोनों इकट्ठे मनाया होगा। आप सभी को रेडियो भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से समय सायंकाल के 4:01 हुआ चाहता है। अब से लगभग एक घंटे तक आपका और मेरा यानी अरविंद भारद्वाज का साथ बना रहेगा। दोस्तों, रेडियो भारत के साप्ताहिक कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, अपने प्यारे हिंदुस्तान की, भारत के इतिहास की, भारत के वर्तमान और भविष्य की। कुछ गीत संगीत हुआ करता है और कुछ पूरे सप्ताह के विश्व के, भारत के और कनाडा के महत्वपूर्ण समाचारों और घटनाओं पर चर्चा होती है। आइए हमेशा की तरह कार्यक्रम का आरंभ एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ करते हैं और धीरे धीरे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
समझ सको मुझे भी समझाना,
लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना।
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना,
अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना।
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना।
नहीं तो ये इशारे क्यों ठहर गए
का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना।
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना,
अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना।
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना।
यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ, 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 यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना।
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना।
प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। अरविंद भारद्वाज 6476400555 पर आप रेडियो भारत में प्रोग्राम के बाद बात कर सकते हैं या आप अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो avi2912@yahoo.ca पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। हम हर शनिवार 4 से 5 आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। काफ़ी समाचार हैं आगे, जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर के ऊपर काफ़ी तनातनी हुई है और पाकिस्तान ने अपनी काफ़ी कोशिशें की हैं। इस बारे में बात करेंगे, कुछ गेस्ट रहेंगे हमारे साथ। उससे पहले कुछ कमर्शियल ले लेते हैं ताकि जब बातचीत हो तो आपको ऐसा ना लगे कि कमर्शियल्स बीच में आ गए हैं और इंटरेस्ट कम हो जाए आपका। तो कमर्शियल्स हम अपने स्पॉन्सर्स के जिक्र पहले कर लेते हैं। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र संजीव मलिक कहते हैं कि डू नॉट गो फॉर चीपेस्ट इंश्योरेंस, गो फॉर बेस्ट बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। एक्सपर्ट फॉर विजिटर टू कनाडा मेडिकल इंश्योरेंस, सुपरविजन इंश्योरेंस, न्यू मेडिकल इंश्योरेंस में हैं संजीव जी, और इंश्योरेंस डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस में भी इनके पास काफ़ी प्लान्स हैं। ग्रुप बेनिफिट्स में भी हेल्थ, डेंटल और विजन के प्लान शामिल हैं। सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज से डील करते हैं संजीव जी, और 6478834445 पर आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ 6478834445। परवीन दलाल जी रेड स्टार रियलिटी सेंचुरी 21 के साथ हैं 6472695666 या परवीन parveen.dalal.com पर भी आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी लाइसेंसेज हैं इनके पास बैक होम इंडिया से भी, और यहाँ भी काफ़ी लाइसेंस लिए हैं इन्होंने, तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं स्पेशली माल्टन एरिया में। और परवीन दलाल जी जो अभी 18 तारीख को जो वहाँ पर जो 15 अगस्त के ऊपर जो प्रोग्राम होता है 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे के, उसमें डाउनटाउन में जो काउंसलर जनरल करवाते हैं वहाँ पर भी अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर हरियाणवी वेशभूषा में आपको प्रवीण दलाल जी बिल्कुल खड़े मिलेंगे। तो हरियाणा के सभी भाई, सभी भारतीय डेफिनेटली आमंत्रित हैं, और लेकिन हरियाणा के सभी भाई अगर वहाँ किसी बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वहाँ भाग लेना चाहते हैं, तो आप प्रवीण दलाल जी जो कि रेड स्टार के साथ हैं सेंचुरी 21 के, आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। किसी तरह की इंफॉर्मेशन हो तो आप ले सकते हैं 6472695666 parveendalal.com। डीपी जैन साहब सीपीए सीजीए 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनका, और 13 साल से ज़्यादा से फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं कनाडा में। एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, कमर्शियल मॉर्गेजेस, बिजनेस कंसल्टिंग एडवाइजरी, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट पर्सनल एंड बिजनेस टैक्सेस में, कंपनी कॉरपोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सीआरए ऑडिट्स, एचएसटी, पेरोल मैटर्स एंड अकाउंटिंग 416-305-0080। डीपी जैन सीपीए सीजीए, आप किसी भी अकाउंटिंग की समस्या के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए आप बात कर सकते हैं इनसे 416-305-0080। जीरो पर। पारस चोपड़ा जी के बारे में बात करते चलते हैं, मॉर्टगेज इंटेलिजेंस से संबंध है पारस जी का। 6476801284 इनका नंबर है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल की सभी तरह की प्रॉपर्टीज के बेस्ट रेट्स के लिए आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 6476801284 पारस चोपड़ा जी आपके होम और ऑटो कमर्शियल इंश्योरेंस के वन स्टॉप सोर्स हैं। कोमल भारद्वाज जी आप उन्हें कॉल बैक कर सकते हैं 416-262-0414 पर। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी आप कोमल जी से बात कर सकते हैं। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए और कम्पिटिटिव रेट लीजिए। कोमल भारद्वाज जी 416-262-0414। आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल ले लेते हैं और प्रोग्राम में लौट कर वापस आते हैं।
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव यूनिट 211 मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉल 416-500-8036।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहां था वही खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहां जाऊं।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दो।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कनाडा वाइड फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group 647-699-888. 647-699-888.
Hello, my name is Deepak Anand, MPP Mississauga, Malton. For any concerns related to healthcare, education, seniors issue, birth certificates or death certificate issue, you can contact our community office at 7895 Tranmere Drive, Unit 20, Mississauga, at the major intersection of Dixie and Derry Road. We are open Monday to Friday, 10 a.m. to 5 p.m. and our office number is 905-696-0367. In case of an emergency, feel free to contact me directly at 647-382-1010. Again, my name is Deepak Anand, MPP Mississauga, Malton. Thank you for your support.
Studio में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ दो अतिथि स्टूडियो में उपस्थित हैं इस समय और उनसे आपकी जान पहचान करवाएंगे और कश्मीर समस्या के बारे में इनसे बात करेंगे। मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं और उससे पहले कि एक दो हम समाचार लें और वापस से कश्मीर पर आएं। विद्याधर जी हमारे साथ उपस्थित हैं, कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी मुखर हैं, कश्मीरी पंडित हैं और इस समस्या को जड़ से जानते हैं और इनको हमने स्टूडियो में आमंत्रित कर किया है ताकि हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इनसे मिल सके और हम जो डिस्कशन करें वो भी जो है उस किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पॉइंट से करें। विद्याधर जी आपका स्वागत है स्टूडियो में।
अरविंद जी बहुत धन्यवाद, आप हमेशा मुझे एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी बात कहने का। एक बहुत ही गलत नैरेटिव जो है बाहर चल रहा है, एक फॉल्स नैरेटिव चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि
जी, जी जी
मेरा सच भी लोग सुने
जी,
जो इतने सालों से आवाज़ दबी हुई थी हमारी।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे विद्याधर जी। दूसरे जो अतिथि हैं हमारे इस विषय में बात करने के लिए वो बैरिस्टर हैं, अटॉर्नी हैं यहाँ पर, और केशव अग्निहोत्री जी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं और इंडो कैनेडियन हार्मनी फोरम में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। स्वागत है आपका केशव जी।
धन्यवाद अरविंद जी। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस विषय पर बात करें क्योंकि बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं आर्टिकल 370 और 35।
बिल्कुल भ्रांतियां ही रह गई हैं जी फैलाने के लिए केशव जी, बिल्कुल बात करेंगे। और छोटी छोटी सी खबरें ले लेते हैं जो कि जैसा कि आप जानते हैं अरुण जेटली जी बीमार चल रहे हैं, अपुष्ट समाचारों के अनुसार वो इस संसार को विदा कह चुके हैं लेकिन अभी हम इसको कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, अभी वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल कन्फर्मेशन। और 28 दिसंबर 1952 को जन्म हुआ जेटली जी का, और इंडियन पॉलिटिशियन हैं और अटॉर्नी हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2014 से 2019। काफ़ी बीमार हैं, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है, लॉयर रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन अभी उनको जो है वो बिल्कुल लाइफ सपोर्ट पे डाला हुआ था और अपष्ट समाचारों के अनुसार वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अभी खबर आनी पूरी तरह से ऑफिशियल कन्फर्मेशन आनी अभी बाकी है। और कुछ छोटी छोटी खबरें हैं वो हम आपको साथ साथ लेते चलेंगे। मेन खबर, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर मामले पर पाकिस्तान और चीन को यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी तकड़ा झटका लगा है और वहाँ पर कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र जो परिषद है, यूएन से जिसको बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हुई जो कि क्लोज डोर बैठक थी, कंसल्टेशन भी बोल सकते हैं उसको। इट वाज नॉट टेकन इन द फाइनल एजेंडा डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो पाया। और जो है बैठक के बाद यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने की तरफ से एक बयान जारी करने की मांग भी थी सदस्यों की, लेकिन वो ठुकरा दी गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीधा कहा है कि ये दोनों का बायलैटरल मामला है और उनको आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। और बेसिकली ये बैठक बेनतीजा और बगैर किसी बयान के समाप्त हो जाने से इस विषय का अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन करने में जुटे पाकिस्तान और उसके सहयोगी देश चीन को बड़ा झटका लगा है। वैश्विक संस्था की 15 देशों की सदस्यता वाली परिषद के ज्यादातर देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय यानी बायलैटरल मामला है। चीन के अनुरोध पर शुक्रवार को बुलाई गई यह अनौपचारिक बैठक करीब एक घंटे तक चली। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत चोंग जून और पाकिस्तान के राजदूत मलिहा लोधी ने एक एक करके टिप्पणी दी। उन्होंने संवाददाताओं के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बैठक में हुई चर्चा के बारे में सूत्रों ने बताया कि चीन किसी नतीजे के लिए पोलैंड द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद करने पर जोर दे रहा था। ब्रिटेन ने भी प्रेस विज्ञप्ति की मांग पर चीन का साथ दिया, लेकिन कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया और बाकी सब देशों ने जो है वो भारत का साथ दिया है, जिनमें अफ्रीकी देश हैं आइवरी कोस्ट और इक्वेटोरियल गुएना, डोमिनिक रिपब्लिक, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने पूरी तरह से भारत के मौकफ का समर्थन किया है। इस विषय में हम जैसे जैसे अपने अतिथियों से बात करेंगे और वैसे वैसे इस विषय में और जानकारियां भी जोड़ते चले जाएंगे। भारत का जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल हैं सैयद अकबरुद्दीन साहब, वहाँ पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे आर्टिकुलेशन किया है और जवाब भी दिया वहाँ पर क्वेश्चंस का। ही वाज़ द ओनली पर्सन हु वाज़ आंसरिंग एंड दैट्स द वे अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव शुड बिहेव।
अरविंद जी, मैं यहाँ आप कहना चाहता हूँ कि सैयद अकबरुद्दीन जो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं,
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारतीय,
वो क्यों ऐसा बोल रहे थे? बिकॉज वो सच बोल रहे थे।
जी बिल्कुल।
देखिए, जब सच होता है
जी
तो झूठ के पांव नहीं होते
जी,
और झूठ टिक नहीं पाता है, वो झूठ चलता है थोड़ी देर तक पर उसकी ज्यादा उम्र नहीं होती।
जी जी बिल्कुल।
देखिए, आज सच सामने आया है, बहुत सारे सच सामने आ रहे हैं जो छुपाया गया इतनी सालों तक। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि आज भी मेरे कितने सारे पाकिस्तानी भाई इस बात को कहते हैं कि इंडिया ने कश्मीर में प्लेबिसिट यानी राजकुमारी नहीं कराई, और ये सारा जो दोष है वो इंडिया के मत्थे डाल देते हैं।
जी।
जबकि मैं उन भाइयों से एक बारी फिर विनती करता हूं कि इतिहास पढ़ें, तथ्यों को जानें।
पढ़ाई लिखाई का और पाकिस्तान का थोड़ा कमी लेना देना है आपको, थोड़ा सा बीच में मैं रोक दूं, आप कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान के चैनल्स देखे हो पिछले दिनों में, केशव जी आपने शायद देखे हो, अगर आपने उनकी भाषा सुनी हो,
अभद्र भाषा है।
अभद्र छोड़िए, वो लगता है जैसे गली मोहल्ले में आपस में लड़ाई कर रहे हैं। गुंडे भी, मतलब बेहुदा नॉलेज और बेहुदा बातचीत। और आप पार्लियामेंट में जो इन लोगों ने भाषा यूज की है वहां पर, जब कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा था, इनके जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको एक दूसरे पार्लियामेंटेरियन बोल रहे थे, ओए संडे, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस। ये क्या आप मतलब लाहौर के किसी गली कोने में बैठकर लड़ाई कर रही हैं? इस जानकारी से, इस शिक्षा से ये कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करेंगे? फिर कहते हैं जी कि हमारा जो जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारे जो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका सम्मान नहीं होता और उनको उस ढंग से लिया नहीं जाता, आप पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं भेजते समझदार से जो वहां के मलिहा लोधी को अपने ही परमानेंट जो वहां पर जो अपॉइंटेड हैं वहां पर फेलो पाकिस्तानी ने उन लोगों ने उसको चोर कहा है वो वीडियो वायरल हुआ है।
और मलिहा लोधी ने जो पिछली बार जो पिक्चर डाली हुई थी सारी दुनिया के सामने, फजीहत कितनी हुई,
फजीहत कितनी हुई।
और कहीं पे समाचार आ रहे हैं कि उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बटवा चुरा रहे हैं।
पहले तो और आई मीन खैर मैं आपको बात ये बातें जो मुझे आगे करनी थी वो आपकी पढ़े लिखे की बात से मैं पहले ही कर गया। तो आप जो है वो इतिहास पढ़ना तो आईना देखना है, आईना देखना नहीं चाहते हैं ये लोग, आईना देखने से असली सूरत सामने आ जाती है। बात पूरी पूरी कीजिए, सॉरी।
नहीं, आप सवाल कीजिए क्योंकि आपके पास दर्शकों के फोन आते रहते हैं तो आप
जी दर्शकों के पूरे दर्शकों जो ऑडियंस है मेरे वो कभी टीवी के माध्यम से कभी इस माध्यम से कॉन्टेक्ट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। और कुछ लोग जो है, मेरा आपको बुलाने का रेडियो पर यह संबंध था कि डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे लोकल कम्युनिटी में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हुए हैं। सब लोग जो है इक्वेलिटी, ह्यूमैनिटी और ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो कि भारत से गए हुए हैं आज हमें जो है वे लोग सिखाने चले, इंक्लूसिवनेस सिखा रहे हैं कि इंक्लूसिवनेस नहीं है, इंक्लूसिवनेस भारत को कोई इंक्लूसिवनेस नहीं सिखा सकता।
सभी धर्मों, अरविंद जी, भारत वो देश है जिसने 10,000 साल तक की अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में किसी भी देश पे, किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म पे अटैक नहीं किया
और जीते हुए जगहें छोड़ी हैं,
जीती हुई जगहें छोड़ी हैं। और जो भी जिसको हम सर्वसमावेशी कहते हैं, इंक्लूसिवनेस वाली बात है कि जितनी भी पर्सिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं दुनिया की जिसमें हजरत मोहम्मद की फैमिली भी है उनको शरण मिली भारत में।
जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इतिहास तो ये पढ़ेंगे नहीं, इतिहास पढ़ते तो फिर लड़ाई किस बात की होती, कहानी खत्म हो जाती।
जो आजकल आप सुन रहे हो कि कोई भी आदमी कहता है कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया कश्मीर की, वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो सब जो कुछ कहा जा रहा है वो एक पार्ट ऑफ द फैशन कहा जा रहा है।
जी 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 जी,
उसमें फैशन है कि भी आप अपने आप को जरा मरा सर नेता कहते हो तो भाई कुछ ना कुछ बयान देना ही है।
जी
ये कुछ लोग तो जो नेता हैं कनाडा में इसके बयान देते हैं जिन्होंने शायद ये आज पहली बार ऐसी चीज सुनी हो।
जी
तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो हमेशा कहते हैं कि यूएनओ रेजोल्यूशन के हिसाब से राय शुमारी वहाँ नहीं कराएगी, पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया गया।
जी
यूएनओ ने ये कहा था, रेजोल्यूशन ये था कि पहले पाकिस्तान ने जो कब्जाया है एरिया वहाँ से निकले, उसके बाद हम प्लेबिसाइट या वो करवाने की बात करेंगे।
जी, 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 जी।
ये कभी वो बात नहीं कहते हैं और इन्होंने आज तक छोड़ा नहीं। पाकिस्तान वाला जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी डेमोग्राफी तो आप सबको पता है कि इन्होंने कैसे चेंज की है, कश्मीरियत का तो वहाँ कुछ है ही नहीं,
वहाँ कश्मीरी बोलने वाला कोई नहीं।
आपने धर्म के नाम पे भारत की डेमोग्राफी चेंज कर दी। जो लोग, जिन लोगों ने धर्म के नाम पे एक राष्ट्र बनाया वो लोग आज हमें सेक्युलरिज्म की भाषा समझा रहे हैं। कितनी कितनी मतलब ये लोग, आप वाली बात है कि इतिहास और आईने में झांक कर देखना भी नहीं चाहते हैं।
बदसूरत चेहरा नजर आएगा,
बदसूरत चेहरा नजर आएगा। आप लोगों का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है हम लोगों को धर्म निरपेक्षता के ऊपर भाषण देने का, मगया मानवता के ऊपर भाषण देने का। आपने तो धर्म के नाम पर ही एक देश बना रखा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और तोड़ के बनाया था। उस समय डेमोग्राफी ध्यान नहीं आई थी आप लोगों को।
और सबसे आप देखिए किसी भी कंट्री के कोई नेता बयान देते हैं तो शांति या उसकी बात करते हैं, इनके नेता न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने में, हम अफगानिस्तान से बॉर्डर से अपनी फौज हटा लेंगे। ये सब चीजें बेकार हैं।
अब फौज हटा के भी लगाएंगे कहां कहां।
जी मैं वापस उन्हीं पाकिस्तानी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि भाई कश्मीर की बात तो छोड़ो, जो तुम लोगों के पास था बांग्लादेश उसको संभाल नहीं पाया,
उसको संभाल नहीं पाया।
उस समुदाय पे जो जुल्म सितम हुआ, देखिए कंपैरिजन में अगर हम जाएं अरविंद जी, तो भारत का जब पार्टीशन हुआ तो करीब 1.5 मिलियन लोग मर गए थे।
जी बिल्कुल,
दोनों साइड से
बिल्कुल बिल्कुल।
और उसके कंपैरिजन में अगर हम जाएं जो बंगाल का
विभाजन हुआ और बाद में जो हुई
जी, करीब 3 मिलियन बंगाली मारे गए
जी।
दुनिया की हिस्ट्री में सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ है कि एबॉर्शन क्लिनिक्स यूनाइटेड नेशंस ने वहां सेटअप किए थे
जी जी जी।
1 लाख से ऊपर बांग्लादेशी बच्चियों की, औरतों की, इवन एज वुमन के साथ जबर किया गया।
3 कारण, धर्म, उनका रंग और उनकी भाषा। इसके कारण आपने जो है वो,
कि आप तो अपने लोगों को नहीं बख्शते हैं
जी।
तो देखें, अब वापस मैं एज ए कश्मीरी हिंदू मैं ये बताना चाहता हूं कि धारा 370 जो है
जी,
ये आज के परिपेक्ष में एंटी ह्यूमन, एंटी वुमन, एंटी यू नो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, एंटी एलजीबीटी और एंटी कॉमन मैन है। मैं एक कश्मीरी हिंदू हूं, शायद जानने वालों को ये ज्ञात नहीं होगा कि अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कोई बेटी किसी भी नॉन जम्मू कश्मीर के बाशिंदे से शादी करती है, चाहे वो दिल्ली का कोई पंजाबी हो या चेन्नई का कोई मद्रासी हो, उसके साथ अगर वो शादी करती है तो उसके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं।
बिल्कुल ठीक है,
तो अब ये मुझे बताएं, बट इसके कंपैरिजन में अगर वही लड़की एक पाकिस्तानी नेशनल के साथ शादी करती
है, नेशनलिटी मिलती
है, तो पाकिस्तानी नेशनल को ना सिर्फ कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी बट ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक भी हो जाता है। आप मुझे बताएं ये आजकल के परिपेक्ष में कैसा कानून है?
नहीं, अभी कह कि वो झूठ बोलते बोलते वो 70 साल से अब इनको लगने लग गया कि यही सच था, जो टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था
जो
उसको सच मानने लगे।
सारी रिजीम्स आई हुई है इतने सालों में, जो सरकारें रही वहां पे सिर्फ वही 3-4 परिवारों की सरकारें रही।
जी जी बिल्कुल,
इन सरकारों ने एक नहीं दो नहीं कितनी बार धोखा दिया लोगों का। मैं यहाँ पे दर्शकों के लिए ये बता दूं कि 1954 में शेख अब्दुल्ला जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे कश्मीर के, जो आज भी एक शेम की बात है कि हमारे एक देश में दो प्रधान थे, वो अमृतसर से वाल्मीकि समुदाय के करीब 200 परिवारों को कश्मीर में लाके सेटल करना चाहते थे बिकॉज वहां पे किल्लत थी सफाई कर्मचारियों की
जी।
लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि मैं एक कश्मीरी हिंदू, 5 अगस्त 2019 से पहले मेरे पास 2 नागरिकताएं थी, एक मेरे पास कश्मीर की नागरिकता थी जिसको स्टेट सब्जेक्ट बोला जाता है, एक अलग से एक सर्टिफिकेट होता है
जी।
और उसके बाद मेरे पास भारत की नागरिकता थी
जी।
तो मेरे पास 2 नागरिकताएं थी, तो इस नागरिकता के बल पे मैं भारत में कहीं पे भी कुछ भी कर सकता था, जमीन ले सकता हूं, इवन मैं प्रधानमंत्री तक बन सकता हूं
जी।
मगर भारत का प्रधानमंत्री या भारत का चुनिंदा हुआ कोई भी व्यक्ति कश्मीर में न जमीन खरीद सकता है न वहां नौकरी कर सकता है। तो ये बेसिकली धारा जो थी 370 हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई थी। तो इसकी वजह से काफी सारी और चीजें, करीब 150 ऐसे कानून हैं जो भारत संविधान के अंदर आते हैं जो कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
कश्मीर से बाहर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के यू नो ऑडिट के अंदर आ सकती हैं, यानी कि आपको लेखा जोखा देना पड़ेगा आपके खर्चों का
जी।
कश्मीर में ये सब नदारत
नहीं है।
शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को जो एक्ट है जिसमें जिन जनजातियों के जो पसमानदा लोग हैं उनको रिजर्वेशंस मिलती हैं, ये कानून कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं था। शर्म की बात ये देखें कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग ही नहीं था, यानी कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी सिख या कश्मीरी बौद्ध जो पॉपुलेशन का इवन 0.05% भी नहीं था वो मेजॉरिटी माना जाता था
जी।
और जो 99% वहां का मुसलमान था वो माइनॉरिटी माना जाता था, यानी कि उनको सारे के सारे दोनों ने सारे के सारे कानून अपने हिसाब से
तभी जब कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ। सारी यहां पर बहुत से प्रोग्राम मैंने सुने हैं क्योंकि मैं तो सिर्फ 1 घंटा यहां पर आता हूं शनिवार को, और मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरे जो चलते रहते हैं यहां पर, उन्होंने यहां पे जो पूरी जो डिस्कशन या कश्मीर के ऊपर, कहीं भी सुडे सेक्युलर्स ने किसी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वहां जो हुआ उसका नाम तक नहीं लिया,
आज़ादी लेते
ठीक है,
किसी को तो ज्ञान भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। और अरुण जी, मैं लगे हाथ ये भी बता दूं दर्शकों के लिए, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन कैंपेन है और हम जो बोल रहे हैं पूर्णतः सच बोल रहे हैं और ये चेक हो सकता है
जी।
जो कश्मीर में 1990 में हमारा पलायन हुआ ये हमारा पहला पलायन नहीं था
जी।
ये इस्लाम की हिस्ट्री, जब से इस्लाम का पदार्पण हुआ कश्मीर के अंदर 14वीं शताब्दी में, जब से शाहमीर डायनास्टी वहां पे फोर्सिबली और पैलेस एंट्रीज के थ्रू कायम हुई, वहां से लेके जब तक सिख और डोगरा रूल नहीं आया, इस सब दौरान
महाराजा रंजीत सिंह के,
महाराजा रंजीत सिंह, उसके बाद डोगरा रूल आया, डोगरा रूल के बाद वापस नेहरू साहब की मेहरबानी से वही मुस्लिम साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वो हमारा सातवां पलायन था। आज की डेट में लोग शायद संघ परिवार को या बीजेपी को ब्लेम करेंगे कि ये बीजेपी ने करवाया। अरे भाई, 13वीं 14वीं शताब्दी में कौन सा बीजेपी, कौन सा संघ परिवार था कि जब हमें कश्मीर से पलायन करना पड़ा? सुल्तान बुद्ध चिकन सिकंदर के राज्य में हमारे एक परिवारों की संख्या सिर्फ 11 रह गई थी, और वो भी गुफाओं कंदरों में छुप के बैठे थे। इतना ज्यादा वहां पे बिल्कुल व्हाट वी कॉल के हिंदू रहित कर दिया था पूरे प्रदेश को। तो इन सब त्रासदियों से हम जेल चुके हैं।
नहीं बिल्कुल, अब मैं पिछले पूरे वीक जो है वो पूरा ये समाचार सुनता रहा हूँ और ये सब चीज़ें चलती रही हैं। मुझे हैरानी ये हुई, वो लोग जिनकी क्रूरता की कभी सीमा नहीं रही, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से, उनकी ये कहा जाता था कि अपनी औरतें छोड़कर निकल जाओ, जो बहुत से डिफरेंट तरह के नारे लगाए जाते थे, पूरी कौम को वहां से नदारत कर दिया, अपने ही देश में वो विस्थापित बन के रहे। किसी गवर्नमेंट ने धारा 376 और 35A के चलते वहां पर कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं हुआ। और आज जब आप बात करते हैं, अभी तो वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। हम कश्मीरी जो वहां पर, वो भारतीय हैं सब, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भारत सरकार का परम कर्तव्य है। अभी 10-11 दिनों में बहुत से लोगों ने वहां पर कहना शुरू कर दिया था कि बंद हो गया और इंटरनेट बंद। क्या हो गया इंटरनेट बंद हो गया? तो 10 दिन के लिए वहां सिक्योरिटी के, आप ही लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया गया बंद वहां पर,
ताकि वहां पर लोग रो रहे हैं,
10 दिनों के लिए लोग रो रहे हैं।
30 साल हो गए वो विस्थापन का दर्द,
विस्थापन का झेलते हुए, लोगों को बिच्छों ने काटा है, सांपों ने काटा है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आज 13वां दिन है, कश्मीर में स्कूल खुल गए हैं, इंटरनेट खुल गया है, 90 में से 96 में से 17 एक्सचेंज चालू हो गए, 50 50 शाम तक, और उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था,
सुरक्षा के लिए,
और सब शांति है। अब जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो इसीलिए है कि कश्मीर खुल रहा है और कश्मीर शांतिपूर्ण तरीके से खुल रहा
है, और वो शांति के तो अगेंस्ट है,
शांति के वो अगेंस्ट है, क्योंकि शांति अगर वहां पर वो दिखाएंगे नहीं कि यहां पर शांति हो जाएगी, तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के कश्मीरी भाई भी कहेंगे
कि हमें आजाद कर दो,
हमें भारत के साथ जाने दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि वहां पर तो इनकी कश्मीरियत को भी खत्म कर चुके हैं, इनकी भाषा को भी खत्म कर चुके हैं, वहां पर कोई कश्मीरी बोलने वाला नाम लेवा बाकी नहीं रहा है, इनके जितने नेचुरल रिसोर्सेज संसाधन है, कश्मीर रिच रहा है, वो पूरी तरह से ड्रेन आउट करके जो है वो पंजाबी जो कंट्रोल किया हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान को, वो सब लोग पैसा खा खा के बाहर बिठा दिया, जितने भी वहां पर जितनी भी जो भी जो बनाए जाते हैं वहां पर डमी प्रधानमंत्री और डमी, वो जहां पर इमरान खान साहब ने जाके अभी भाषण दिया है
14 अगस्त डमी है
खुद, हाँ वो तो खैर खुद भी डमी है, पाकिस्तान की तो ये हिस्ट्री रही है। खैर, तो ये लोग जो है वो भी शांति इसलिए, बौखलाहट इसलिए जारी है। खैर विद्याधर जी, आपसे इस विषय पे जानकारी कश्मीरी पंडित के हैसियत से आप, और एक अवेयर्ड कैनेडियन सिटीजन के हैसियत से, और ह्यूमैनिटी के ऊपर आप जरूर जानकारी लेते रहेंगे, आपसे प्रोग्राम जारी रहेगा। केशव जी से बातचीत शुरू करते हैं। केशव जी, मैं लीगल के ऊपर, लीगली इसके ऊपर बड़ा ये कह रहा है कि बड़ा इलीगल है जी ये।
हाँ, मैं उस विषय पर एक ये कुछ बातें आपको बताना चाहता
हूँ। जी जी प्लीज।
जो तथ्य है
जी,
मैं चाहता हूँ कि आपके जो सुनने वाले हैं
जी,
वो इस चीज को समझें और जानने की कोशिश करें
जी,
खाली मेरे कहने पर न रहें, किताबों में देखें
जी,
और उस टाइम की जो डिबेट्स हैं उनको पढ़ें।
हाँ, व्हाट्सएप ज्ञान और
व्हाट्सएप ज्ञान
वहां से निकलकर थोड़ा
अधिक, ज्यादातर व्हाट्सएप ज्ञान जो है वो एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप, वही फिर आगे लोग बोलते हैं
जी।
मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं जी कि जब ही कश्मीर का एक्सेशन हुआ तो उसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, ये किया गया वो किया गया, जो पाकिस्तान चिल्लाता है और दूसरे लोग चिल्लाते हैं, शायद सारी दुनिया चिल्ला रही
जी।
मैं ये बता दूं कि इंडिया में जब आज़ादी मिली तो 550 और छोटे छोटे राज्य थे
जी,
जिनमें से जम्मू कश्मीर के एक महाराज भी थे
जी।
जो एक्सेशन टू इंडिया था, हर एक आदमी ने एक ही तरह का साइन किया है
जी,
तो वो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट कोई डिफरेंट नहीं,
कोई डिफरेंट नहीं है।
तो ये जो कहना कि हमें ही हक दिए गए थे, हमने ये हक मांगे थे, वो मैं अगर कहूं बिल्कुल बकवास है
जी,
वो चाहे कोई भी कह रहा हो
जी। जी,
अब उस एक्सेशन होने के बाद में ये सब हुआ था 1947 में, कुछ 26 अक्टूबर को
जी
महाराजा हरि सिंह ने वो
एक्सेशन कबायलियों ने उधर से हमला किया तो
उस समय क्या
जी,
तो उसके बाद में क्या हुआ, उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की इंडिया की प्रक्रिया थी
जी,
तो ये जितने भी राज्य थे सबके अपने अपने कुछ कानून थे, कॉन्स्टिट्यूशंस थे। अब कनाडा का जब कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में बना,
उसमें भी सब मिलाया गया,
उसमें अगर आप बाजार में जाइए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खरीद के लाना है, आप एक बुक ले आएंगे, आप जाइए जरा बाजार में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा,
जी
कोई किताब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा की। और कनाडा में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ कनाडा, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, सारी प्रोविंसेस के सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन है
जी।
तो ऐसे जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये जो इनके अपने अपने लॉज थे वो कहां जाते, उनको भी कहा कि भाई इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक इंटेग्रेट कर दिया जाए
जी।
तो इंटेग्रेट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्केड्यूल्स बनाई गई, जो जैसे आप देखते ना कि ये इस स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंटर सब्जेक्ट है। तो वो करते करते जब वो इंटेग्रेशन कर रहे थे
जी,
उस समय कश्मीर का जब मामला था तो उसमें कैसे इंटेग्रेट करते, आधा कश्मीर तो पाकिस्तान ने ले लिया
जी, जी,
और नेहरू जी यूएनओ में चले गए
जी।
तो उस चीज को देखते हुए उस समय लास्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब सब डिबेट खत्म हो गए थे
जी,
उस दिन ये प्रियम्बल पर खाली डिस्कशन होनी थी, उस दिन एक व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन वाले ने खड़ा होकर के कहा कि जी एक और आर्टिकल डाल देते हैं। तो सबने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये आर्टिकल आप आज क्यों कह रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट वाली जो कमेटी है 7 लोगों की, उसके थ्रू क्यों नहीं ला रहे हो। तो उसने दूसरे एक अयंगार करके थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने जवाब देना शुरू किया कि इसलिए कर रहे हैं इंटरम, पहले उन्होंने वर्ड इंटरम यूज किया था, ये बाद में टेम्परेरी कहा गया
जी जी जी,
कि इंटरम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कश्मीर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे माहौल है और आधे से ज्यादा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है तो इसको क्या करें। तो सबने कहा कि हम ये एक इंटरम अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे प्रेसिडेंट जो होगा वो कोई भी आर्टिकल कश्मीर में एक्सटेंड करने से पहले उसको मॉडिफाई कर सकता है या कह सकता है कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा
जी 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 जी।
ये टेम्पररी
आर्टिकल था।
तो आगे मैं 35A पर बाद में बात करूंगा
जी, इस विषय में बातचीत जारी रहेगी और केशव अग्निहोत्री जी और विद्याधर जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और कश्मीर के विषय में ही आज का प्रोग्राम है और एक गीत के बाद हम इस प्रोग्राम में वापस शामिल होंगे। आप इस प्रोग्राम को 6475571017 डायल करके फोन पर सुन सकते हैं या eawaz.com पर भी आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। हर शनिवार 4 से 5 6470055 पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। आइए गीत सुनते हैं और प्रोग्राम में लौटकर वापस आते हैं।
हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भर मस्ती छाऊंगे, अब तो लहराया मस्ती भरी छाऊंगे, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आपका दोस्त अरविंद भारद्वाज 6476400555 पर आप इस प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं avi2912@yahoo.com। 35A केशव जी जरा सा बताइए फिर आगे बातचीत करते हैं।
35A के बारे में बहुत कहा जा रहा है, तो मैं ये बता दूं कि 35A आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से बनाया गया था
जी
1954 में
जी।
तो वो प्रेसिडेंट ने उस समय पूछा कि क्या मेरे पास ये बनाने की पावर है
जी,
तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया कि देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको हम ऑफिशियली ना डिस्कस करके प्राइवेटली करेंगे
जी।
तो दैट मींस दिस वाज द मिसचीफ डन एट दैट टाइम। अब मैं बताऊं कि आर्टिकल 35A 370 का मिसयूज है। 370 जैसे बहुत आर्टिकल है इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के लिए,
बताया
इसको मिसयूज किया गया है, तो उसलिए अब 35A क्या कहता है, उसने क्या पावर दी स्टेट को
जी।
ये जो शरारत हुई उसने ये पावर दी कि स्टेट ये डिसाइड कर सकती है कि यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस कौन होगा, एक। दूसरी स्टेट ये डिसाइड करेगी कि किसको राइट्स मिलेंगे एम्प्लॉयमेंट के, रेजिडेंस के, स्कॉलरशिप के, प्रोफेशनल एजुकेशन के, ये स्टेट डिसाइड करेगी। दिस वाज द पॉलिटिकल किलिंग ऑफ द पीपल व्हिच स्टेट डिड नॉट वांट। तो जो मेरे अभी साथी इन्होंने अभी सुनो श्रोताओं को बाल्मीक्यों वाली बात बताई
जी जी जी,
तो जब कैरो ने कहा, इन्होंने कैरो से कहा कि हमारे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है तो हमें कुछ भेजो
जी,
तो कैरो ने मना कर दिया कि आपके यहाँ तो भाई आदमी रह नहीं सकता, तो उन्हें पीआरसी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप भेजिए, हम इंतजाम कर देंगे। उस समय वहां कश्मीर में गंदगी फैल रही थी, तो ये लोग जो गए इन्होंने क्या इंतजाम किया, ये कर दिया कि सफाई कर्मचारी को पीआरसी की जरूरत नहीं है
जी।
अब बात वो चले रहते रहे, काम करते रहे, रोजगार मिला रहा। जब उनके बच्चे पढ़ लिख गए ना, तो उनको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा ना, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए उनको कुछ मिल रहा ना, परमानेंट रेजिडेंस।
तो उस तरफ तो वहां पे वो
नहीं सुनिए अरविंद जी, जब उन्होंने कहा कि मैं पढ़ गया हूँ तो मुझे दो, हम तो यहाँ पीआरसी हैं, हमें तो ऐसा लाया गया था, तो बोलने लगे कि नहीं आपके लिए तो पीआरसी की जरूरत नहीं है। अगर आप सफाई कर्मचारी का काम करना चाहते हो,
लड़की पीएचडी जिसने की उसको भी बोला गया,
तो अभी ये बताओ हिंदुस्तान में ये पॉसिबल है कि एक आदमी सफाई कर्मचारी के घर में पैदा हुआ तो सारी सारी जनरेशन उनकी सफाई कर्मचारी रहेंगी? ये मिसयूज था 35A आर्टिकल का। अगर कैनेडियन लीडर इसको जस्टिफाई करते हैं तो मेरे साथ बात करके बताएं, आपके प्रोग्राम पर आए,
जस्टिफिकेशन तो
आपके प्रोग्राम पर आकर बताएं कि ये गलत किया।
मैं पहले यही बोलता हूं कि ये जो लोग हैं ये कम से कम हिंदुस्तान को तो डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, इंक्लूसिवनेस इन सब चीजों के ऊपर भाषण देने वाले कोई नहीं है। ये कंसेप्ट हमारा दिया हुआ है इन लोगों को, तो ये समझाने वाले तो कोई नहीं है। खैर, अब ये जो 370 और 35A का मुद्दा तो अब ये पुराना हो गया। अब तो दो स्टेट, दो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास, और मैं जैसे अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि 190 के करीब स्कूल जो हैं वो सोमवार में घाटी में खुल जाएंगे, और 50% से अधिक लैंडलाइंस ऑलरेडी चल चुकी हैं, और सभी लोग जो हैं वापस कश्मीर में नॉर्मल एसी की तरफ। कश्मीर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऊपर वाला चाहेगा तो वहाँ बहुत सी डेवलपमेंट होगी। रिलायंस ने भी वहाँ डेवलपमेंट जारी कर दी है, काफ़ी प्लान जारी कर दिए। आपको क्या लगता है एज ए कश्मीरी पंडित, आपका वहाँ पर वापसी पॉसिबल है और कश्मीर को आप कैसे देखते हैं आने वाले समय?
अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं जो एक फीलिंग है मेरी, आई एम एक्साइटेड
जी।
जो चीज हमने सोच एक ड्रीम तो करी थी
जी,
बट उसका कार्यान्वयन मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा था
जी,
क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो धारा 370 थी
जी।
पिछले 30 सालों में तो हम लोग गए हैं कश्मीर वापस, हमारे वहां पे आज भी कुछ तीर्थ स्थान जो बचे हुए हैं,
जो बचे
तो यूसुफ हैं या मतलब तोड़े ताड़े गए हैं, पर कुछ हमारे जो आर्मी के संरक्षण में है, पिछले 30 सालों से हम जाते रहे वहां पे, पर मैं कभी नहीं गया क्योंकि मुझे वो धरती जो है वो ऑक्यूपाइड एक लैंड लगी जहां पे मैं जाना चाहता था हमेशा अपनी टर्म्स पे, नॉट एज ए विजिटर
जी।
अब वो जो सपना है वो मुझे साकार होता नजर आ रहा है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ टोरंटो में भी और जितने भी लोग सुन रहे हैं दुनिया में, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कश्मीरी भाई बहन वहाँ पे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो खुद यर्गमाल है, एक वो बंधक बन चुके हैं एक आइडियोलॉजी के
जी।
जो कश्मीरियत का नारा वो इतने सालों से देते आ रहे हैं या आज़ादी की जो रैंट है, उनको समझना चाहिए कि ये एक गेम प्लान था, जो एक वो गज़वाए हिंद का जो एक कॉन्सेप्ट है उसका एक पार्ट था
जी।
अगर ये कश्मीरियत का नारा होता तो सबसे पहले हमें नहीं निकाला जाता। जो अरविंद जी अब नारों की जिक्र कर रहे थे, मैं यहाँ पे बता दूं लोगों को कि कश्मीर में जो नारे बुलंद हो रहे थे 1989-90 में
जी।
कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, आज़ादी का मतलब क्या, ला इला इल्लल्लाह, हाथ में है कलाशनकोव, दिल में है खुदा का खौफ, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो इस सब चीजों में हम कहाँ थे?
कलाशनकोव से लेके ही खुदा का खौफ दिखाया,
कहीं हम नहीं थे अरविंद जी इस सारे सीन में। और जो हमारा सो कॉल्ड एक सूफी समुदाय था, वैसे कश्मीर में कोई क्राइम नहीं था अरविंद जी 89-90 तक, बिल्कुल हमने कभी सुना भी नहीं था। तो एक रात में उस कश्मीरी मुसलमान भाई को मैं काफिर नजर आने लगा बिकॉज ऑफ द इंडॉक्ट्रिनाइजेशन जो हुई वहां पे, जो मदरसा कल्चर शुरू हुआ
जी,
एक रात में मैं काफिर नजर आने लगा
जी।
और मुझे आज मैं ये सब के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी पाकिस्तानी या किसी अफगानिस्तानी या मुझे किसी सूडानी मसले ने नहीं निकाला वहाँ से, मुझे निकाला मेरे पड़ोसी, मेरे अपने कश्मीरी मुसलमान भाई ने। बट आज 30 सालों के पलायन का दर्द लेने के बाद भी मैं वो सब भूलने को तैयार हूँ। अब एक 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 रास्ता बन चुका है, हमें उस पर हाथ में हाथ डाल के साथ चलने की ज़रूरत है, और कश्मीर को हम वही जन्नत वापस बनाएंगे जिसको 30 सालों में इन्होंने दोजख बना डाला है। खून की नदियां बही हैं वहाँ पे, लोगों का खून वहाँ बहा है, चाहे वो मुसलमान का खून है या चाहे हिंदू का खून है, अल्टीमेटली इंसानियत मरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद जी कि एक एक हमें एक मौका मिला है वापस उस जन्नत को रिवाइव करने
जी का। जी, और बिल्कुल ये साथ में ये भी हम स्पष्ट कर दें कि जब हम कश्मीरियत या कश्मीरियों की बात करते हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीरी मुसलमान भाई बहन भी शामिल हैं, और जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन्ह भी शामिल है। ये स्पष्ट है, ये भारत का दृष्टिकोण हमेशा से रहा है। अब इस दिशा में कठोर कदम उठने शुरू हुए हैं। अभी पाकिस्तानी जो जिस हिसाब से चल रहा था, कश्मीर के नाम पर काफ़ी पैसा आता था, अब दिक्कत यह है कि कश्मीर के आने पर पैसा आना कम हो जाएगा। अभी वहाँ जाने के बावजूद वहाँ से निकलते ही यूनाइटेड नेशन ने $4.1 बिलियन जो है वो ग्रांट जो है वो कैंसिल कर दिया उन्होंने, वो 4.1 पर रह गया, बाकी $441 मिलियन तकरीबन जो है हमसे शॉर्ट कर दिए। बुरा हाल है पाकिस्तान में, जो इकॉनमी
खलबली मची हुई है
और जो पाकिस्तान
इस समय दुकान बंद हो चुकी है,
दुकान बंद हो गई
असल में, दुकान के नाम पे जो उन्होंने उनका कशकोल था, वो जो भिखारी का वो पात्र लेके घूमते थे सारी दुनिया में कश्मीर के नाम पे, वो दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए वहां पे उनके ना जख्मों पे नमक पड़ा हुआ है और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं।
और हैरानी है, अगर आप सुने वहां पर, केशव जी मैं आपकी बात पूरी लेता हूं अभी, आप इतना मतलब आप ये समझिए कि उनके मिनिस्टर्स तक वो भड़काऊ भाषण यूज कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ का 22 करोड़ मुसलमान जो है वो उठ के खड़ा हो जाएगा और भारत के खिलाफ इतनी मूर्खतापूर्ण और
खाली पेट ये सब फालतू
की बातें, वो लोग क्या सोचते हैं कि मतलब भारत का मुसलमान उन्हीं के कहने पर चलेगा, यहाँ के कहने पर तो भारत के सिख नहीं चले, यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की, कुछ एक मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ पर भारत में जो पीछे चुनाव हुए थे।
अरविंद जी मैं गर्व के साथ ये सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर मुसलमान जो एक मोनार्क नहीं है वो एक भारतीय है, अजीम हाशिम प्रेम जी,
बिल्कुल
ये हमारे भारत की समावेशता है, इंक्लूजन है कि दुनिया का सबसे अमीरतम मुसलमान एक हिंदुस्तानी है।
नहीं आप भारत का इस समय जो 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 चीफ है, इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है धनोआ साहब, वो सिख
हमारे अकबरुद्दीन साहब
तो जो है जो अभी जो जिन्होंने भारत का मौकफ वहां पेश किया है यूनाइटेड काउंसिल में, वो मुस्लिम है। भारत में रहते हुए हमारा इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और हैरानी ये है कि धर्म के नाम पर एक देश को तोड़ के नया देश बनाने वाले लोग आज हमें धर्म निरपेक्षता का उपदेश दे रहे हैं। अब कटोरा खाली है, इकॉनमी बुरे हाल में है, पैसा अमेरिका भी बहुत देने रही है, काट लिया उन्होंने बहुत सारा पैसा वहां से ही। अब जब इमरान खान जैसे लोग और बाकी जो उनके बड़े बड़े ओहदों के ऊपर वो लोग बैठे हैं, जो पैनलिस्ट आकर बैठते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, वो कहते हैं एक दिन जिहाद होगा और एक दिन सब मुसलमान खड़े हो जाएंगे,
भड़काऊ भाषण बेसिकली।
अरे आप लोगों से अच्छी तरह से वहां हिंदुस्तान का मुसलमान रह रहा है और अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है।
कश्मीर में भी अगर हम देखें जितने भी अलगाववादी लीडर रह चुके हैं, चाहे वो मुफ्ती फैमिली के हों या अब्दुल्ला फैमिली के हो, उनके अपने बच्चे तो महफूज हैं,
उनके अपने
मरने के लिए तो कॉमन आदमी का बच्चा ही पत्थर उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बात मैं चाहता हूं कि कश्मीरी मेरे भाई बहन समझे इस बात को और देखे कि असल में दुश्मन कौन है उनका।
बिल्कुल नहीं, अब दिख जाएगा, अभी कश्मीर खुल गया है, अब जो ये शोशे फेंक रहे हैं डिफरेंट यू नो प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और जो सीक्रेट चैनल हैं इन लोगों के, वहां से जो अभी फेंक रहे हैं गार्बेज, वो सब झूठना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, लड़ने की तो हैसियत बची नहीं है, दो दिन का भी पेट्रोल नहीं है, फाइटर प्लेन्स क्या पानी से उड़ाएंगे। मुझे हैरानी ये होती है कि आप लोग पहले अपने देश के ऊपर काम करें, अपने देश को, अपने लोगों को सही इतिहास पढ़ाएं, सही शिक्षा दें, उन लोगों को तैयार करें कि वो विश्व में आकर, यहाँ जो पाकिस्तानी बच्चे नए आते हैं बैंकों में काम करते हैं बड़ा अच्छा सेटल, टैलेंट की कमी थोड़ी है, खिता तो वही है, क्षेत्र वही है,
डीएनए हमारा सेम है सर, डीएनए धर्म अलग अलग है ना,
तो वो उनको धर्म की भी अलग परिभाषा पढ़ाई जा रही है, उनको अगर ढंग से पढ़ाएं तो कुछ गलत नहीं लिखा हुआ किसी भी धर्म में, लेकिन ढंग से पढ़ाना नहीं है, अपनी अलग इंटरप्रिटेशन पढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश में पहले ध्यान दें, हिंदुस्तान के बारे में चिंता बाद में कर लें, वहां वैसे 22 करोड़ मुसलमान हैं और 130 करोड़ हिंदू हैं, और अपने देश को संभालने के लिए और 2 करोड़ सिख भी हैं, और तो बहुत से हजारों धर्म, अब सबकी गिनती तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि हम लोग वहां जब रहते हैं तो हम लोग जब बात करते हैं हम लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि कौन किस धर्म का है, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हमारे कॉरपोरेट्स हैं, हमारे टीवीज हैं, हमारा साहित्य है, वो सब मिलकर लिखते हैं, मिलके चलता है सब कुछ, वहाँ कभी ध्यान नहीं आता कि ये जो भजन जो इस समय कृष्ण जन्माष्टमी पे चल रहा है, ये जो है वो
मोहम्मद
रफी साहब का गया हुआ है और नौशाद साहब का तर्ज किया हुआ है, ये सब नहीं चलता है वहाँ पर। तो ये जो बेवकूफाना हरकत आपने की थी,
स्टार्ट से करते आ रहे हैं
और स्टार्ट से करते आ रहे
हैं, जो पाकिस्तान का कौमी तराना सबसे पहले लिखा गया था वो हिंदू ने लिखा था,
जी जी जी,
उसको बरतर किया गया,
हाँ वो उसको उठा के जो है वो, अरे बहुत माइन्यूट चीजें हैं, कभी लंबी बात होगी तो बिठाऊंगा, ठुमरी तक में से राम गायब कर देते हैं, अजीब है, अभी मतलब अवध से जो कल्चर उठा है वो उसको भी आप चेंज करेंगे इस तरह से, तो फिर इस तरह से फिर
गाय हिंदू हो गए और बकरा मुसलमान हो गए,
इस तरह से तो पाकिस्तान पाकिस्तान जैसा देश ही बना सकते हैं, हिंदुस्तान जैसा देश कभी नहीं बना पाएंगे। केशव जी आप अपनी बात,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग शोर मचा रहे हैं
जी,
अब ये देखना चाहिए कि हुआ क्या है, उनको क्या फर्क पड़ा है, मैं अपने घर में कुर्सी यहाँ से उठा के वहां रख लूं, इधर से उधर कर लूं, मेरे पड़ोसी को क्या प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज हुई है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम,
पड़ोसी को प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो दूसरे के जो दीवार है ना वो कांत पे चढ़ के देख रहा है कि दूसरे घर में हो क्या रहा है।
नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, उनको जो सरकारें थी पहले मुफ्ती की हो अब्दुल्ला की हो, ये क्लैंडेस्टीन सपोर्ट देती थी उनको,
जी, जी,
अब लॉ एंड ऑर्डर यूनियन टेरिटरी होने की वजह से कम्युनिस्टी के अंडर आ गया,
जी, जी,
तो जो इंटरनल सपोर्ट है वो कम हो गई, इसका रोना है,
बस रोना है
और किसी चीज का रोना नहीं।
ठीक है, आगे ये प्रोग्राम जारी रखेंगे, अगली बार भी, समय हमें इजाजत कम दे रहा है, फाइनल एक वर्ड कश्मीर के भविष्य के बारे में आप बताइए विद्याधर जी, एक फाइनल लाइन कश्मीर के भविष्य के बारे में।
भविष्य तो बहुत सुनहरा है,
बहुत अच्छा,
बट कांटे बहुत हैं रास्ते में,
जी जी जी,
और
जी,
वो कांटे जो हैं
कोई नहीं,
देखिए मैं बिल्कुल निकाले जाएंगे, देखें पिछले चले दारा 370 जो है 70 साल तक रही
जी,
कोई सोल्यूशन नहीं मिला
जी,
तो मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों को तकलीफ है इससे
जी,
तो वो भी इंसान है, चाहे वो मुसलमान है या किसी और धर्म के अनुयायी हैं
जी,
मोदी जी को एक चांस दिया जाए 10-15 साल तक, इवन पाकिस्तान के जो बासिंदे हैं भैया सोल्यूशन आज तक नहीं मिला
जी,
आप अगर मोदी जी को लग रहा है कि एक सोल्यूशन हो सकता है
जी,
क्यों में चांस 10 साल तक चुपचाप बैठे रहो और देखो कि अगर इस नई जो सोच से कोई नया चेंज आता है क्या। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं, जो मेरा सपना है मैं अपने बच्चों को कश्मीर दिखाना चाहता हूं, अरविंद जी याद करके मुझे रोना आता है कि मैं वो ऐसा मुसाफिर हूं जो सारी दुनिया में दर दर भटक रहा मगर मेरे जो
रूट सुनवाई नहीं है
और जो मेरे रूट्स हैं जो मेरी जड़ है वो कटी गई,
वो कटी गई, कोई बात नहीं। केशव जी आपकी लाइन, फिर प्रोग्राम में एक गीत के साथ समाप्त करेंगे जी।
मेरा ये मानना है कि अब आगे कश्मीर में खुशहाली ही आएगी, एक जो शरारत हुई थी 60-70 साल पहले और कुछ मूर्खों ने मिलकर उस शरारत को कंटिन्यू रखा,
जी 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 जी,
बस वो दूर हो गई है
जी,
अब अगर पेन कांटा निकल गया तो फिर तो आनंद ही आएगा।
बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, आप स्टूडियो में आए, अपनी बातचीत शेयर की, आगे भी आपसे जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे, जब भी प्रोग्राम होगा अगले शनिवार 4-5 और कश्मीर के विषय में बातचीत करेंगे। आज का प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, अगले शनिवार 4-5 के बीच आपका दोस्त अरविंद भारद्वाज फिर से हाजिर होगा और नई समस्याओं के ऊपर एक नए तरीके से बात करेंगे। एक मधुर गीत के साथ आपको छोड़ के जाते हैं।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
Pakistan, ये अदाए नासा है जमाना है ना, कोई दीवाना है कोई जान से गया, साहिना ना थे।
Hi, Hi Canada, Assalamu Alaikum, this is Bilal Ashraf.
And this is Mahira Khan. And our film Superstar is coming out this Eid al-Adha.
So go and get your tickets now.
Right now.
And see us on the big screen.
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल डे बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप
सितंबर 14 और 15 CAA सेंटर ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम
टिकट फ्री पार्किंग फ्री स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में आमचू मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में कलकत्ता भेलपुरी चटोरी गली में जलेबी तलेगी चटोरी गली में कपल कनर मटका चटोरी गली में
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival. Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Niyat phislegi jab jeeb lap lapayegi. Jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame. Sab ke liye kuch na kuch.
Divorce ya custody di ladai, zindagi di sab ton aukhi ladai hundi hai. Kyunki tusi os shakhs na lad rahe hunde ho, jis na tuhada ghar, parivar, te tuhade bacche saanje ne. Os waqt kai sawal uthde ne. ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੰਡਨ ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ